ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಪ್ರಭಾತ್.
दोस्तों, कार्यक्रम स्वतंत्रता प्रभात की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति के दौरान ईरान की जनता की मुख्य आकांक्षा स्वतंत्रता और अपने भविष्य निर्धारण के अधिकार को अपने हाथ में लेना था। पहलवी शासनकाल के दौरान ईरानी राष्ट्र ने अत्याचार, घुटन, दमन और समस्याओं को अपने पूरे अस्तित्व से महसूस किया था। वे ऐसी लोकतांत्रिक सरकार के गठन के इच्छुक थे जिसमें जनता के अधिकारों का सम्मान किया जाए। दूसरी ओर ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खोमेनी ने भी जनता की इस मांग का खुलकर समर्थन किया, जो स्वयं को जनता के सेवक मानते थे।
इस संदर्भ में स्वर्गीय इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह अलैह के उत्तराधिकारी आयतुल्लाह हिल उज़्मा सैयद अली खामनेई ने कहा कि इमाम खोमेनी ने संघर्ष के ध्वज को जनता के हवाले कर दिया था। ये एक वास्तविकता है कि पहलवी शासन के विरुद्ध संघर्ष में जनता की भरपूर उपस्थिति ने अंततः उसकी सरकार गिरा दी। ये देखा गया है कि दुनिया की क्रांतियों के नेताओं ने क्रांतियों की सफलता के बाद सामान्यतः जनता से धीरे धीरे दूरी बनाई और उनको दिए गए वचनों को भुला दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया और उस पर चल पड़े। इस काम से उस देश की जनता को आघात लगा जहां पर जन क्रांति आई थी।
हालांकि इसके विपरीत स्वर्गीय इमाम खोमेनी ने ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के तुरंत बाद जनमत संग्रह का आदेश दिया ताकि लोग अपनी मनपसंद सरकार के गठन के संबंध में खुलकर विचार पेश कर सके। इस जनमत संग्रह में भाग लेने वालों में 98% से अधिक लोगों ने इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था के गठन का फैसला किया। इस जनमत संग्रह के कुछ सप्ताहों के बाद कराए गए एक अन्य जनमत संग्रह में ईरान की जनता ने संविधान की पुष्टि की जिसको उनके प्रतिनिधियों ने तैयार किया था। यह संविधान हर प्रकार के अत्याचार और आर्थिक एकाधिकार को नकारने को सुनिश्चित बनाता है। इसी के साथ ये लोगों को उनके भविष्य निर्धारण का पूरा अधिकार देता है। लोकतंत्र की स्पष्ट निशानियों में से एक लोगों द्वारा अपने भविष्य का स्वयं निर्धारण करना है, जिसको निष्पक्ष चुनाव द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से अब तक देश की जनता कई बार चुनाव में भाग लेकर अपना दृष्टिकोण पेश करती आई है।
ईरान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है उसकी एक विशेषता उसका धार्मिक और इस्लामी होना है। ईरान के संविधान के 56वें अनुच्छेद में आया है कि ये एक अटल वास्तविकता है कि लोगों और संसार पर शासन करने का पूरा अधिकार केवल ईश्वर के पास है। उसी ने मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन के निर्धारण का अधिकार दिया है। दूसरे शब्दों में इस्लाम में मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में मनुष्य ईश्वर की ओर से प्रदान की गई इस विभूत के अंतर्गत अपने लिए सही मार्ग का चयन कर सकता है। ईरान में पाया जाने वाला लोकतंत्र इस्लामी शिक्षाओं से लिया गया है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं, हम नया उदाहरण लाए हैं। हमने लोकतंत्र को धर्म से लिया है। हमारा लोकतंत्र आध्यात्म से जुड़ा है, इसलिए ये धार्मिक लोकतंत्र है।
धार्मिक प्रजातंत्र में जनता और शासक के बीच संबंध की व्याख्या में स्वर्गीय इमाम खुमेनी जनता और अधिकारियों के बीच हार्दिक संबंध पर बल देते हैं। वे राष्ट्र को शासक का अन्नदाता मानते हैं। उनका मानना था कि जनता ही है जो धार्मिक प्रजातंत्र को अत्याचारी शासन का रूप धारण करने से रोकती है। इस व्यवस्था में जनता सरकार के क्रियाकलापों पर पूरी तरह से नजर रखती है। इस संदर्भ में इमाम खोमेनी का कहना है कि अगर शासन व्यवस्था कोई चीज थोपना चाहे तो राष्ट्र उसका रास्ता रोक सकता है। वे अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने के धार्मिक सिद्धांत के संबंध में देश के शासन तंत्र की निगरानी को न केवल जनता का अधिकार मानते हैं, बल्कि इसको वे उसका कर्तव्य मानते हैं। इमाम खुमैनी का कहना है कि पूरे राष्ट्र का कर्तव्य बनता है कि वो सभी मामलों पर नज़र रखे, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी नज़र रखे।
ईरानी जनता की दो मुख्य मांगें थीं, स्वाधीनता और स्वतंत्रता। इन मांगों की जड़ें ईरान के इतिहास और ईरानी जनता के धार्मिक व राष्ट्रीय मूल्यों में निहित हैं। जब ईरान की जनता ने स्वाधीनता और स्वतंत्रता की मांग उठाई तो उस समय दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में बहुत से ऐसे राष्ट्र थे जो वास्तव में पीड़ित राष्ट्र थे। जब ईरान की जनता ने एक आवाज़ होकर इस्लामिक क्रांति के लिए नारे बुलंद किए तो दुनिया के बहुत से पीड़ित राष्ट्र और स्वतंत्रता प्रेमियों ने भी अपने देशों में स्वतंत्रता और स्वाधीनता की मांग करना आरंभ कर दी। ये वे लोग थे जो साम्राज्यवादी शक्तियों के अत्याचारों से बुरी तरह से ऊब चुके थे। यद्यपि स्वतंत्रता प्रेम के साथ स्वाधीनता की मांग इस्लामी क्रांति की सफलता के दौरान ईरानी राष्ट्र के मुख्य नारे थे, किंतु यदि इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ईरान में ये दो मूल्य एक शताब्दी पहले ही व्यवहारिक हो गए थे और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है।
ईरान की इस्लामी क्रांति आरंभ से ही क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों में ध्यान का केंद्र बनी हुई थी। इसी प्रकार क्षेत्रीय समीकरणों पर भी इसका बहुत असर है। ये बात स्पष्ट है कि इस्लामी क्रांति स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व में सफल हुई। उन्होंने इस क्रांति को सफल बनाकर इतिहास रच दिया। 20वीं शताब्दी की इस महाघटना ने एक और दुनिया में छाई हुई दो ध्रुवीय व्यवस्था को उलट दिया। इसी के साथ उसने ऐसे शासन को जड़ से उखाड़ फेंका जो बाहरी शक्तियों पर निर्भर था। इस शासन को बहुत ही मजबूत शासन समझा जाता था, जिसको बड़ी शक्तियों का पूरा समर्थन भी हासिल था।
ईरान जैसे देश में जो स्ट्रेटेजिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत अहम है, स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा बड़ा राजनीतिक बदलाव लाए जो जनता पर आधारित है। इस्लामी क्रांति ने मुसलमान देशों में बहुत ही गहरी जागरूकता पैदा कर दी थी। इस जागरूकता से गहरे राजनीतिक बदलावों व राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि प्रशस्त हुई। इस क्रांति से एक बार फिर इस्लाम को दुनिया में एक नया निर्णायक शक्ति के रूप में पहचानवाया। वैचारिक आधार, नैतिक क्षमता और क्रांति से उत्पन्न गहरे बदलाव ने बहुत से राजनीतिक पंडितों को क्रांति की अवधारणाओं के बारे में पुनर्विचार करने पर बाध्य कर दिया।
इस्लामी क्रांति की सफलता की वर्षगांठ इस बात का अवसर देती है कि हम इस बात को फिर से समझें कि यह क्रांति किस तरह कामयाब हुई, क्योंकि इस क्रांति के ईरान सहित दुनिया पर गहरे प्रभाव के दृष्टिगत इसमें युवा पीढ़ी को बताने और समझाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। दुनिया की अन्य क्रांतियों की ही भांति ईरान की इस्लामी क्रांति भी अत्याचारी शासन का पतन और जनता की उमंगों को स्थापित करने के उद्देश्य से आई थी, जिसमें जनता ने इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर न्यायप्रिय सरकार के गठन की मांग की थी। निसंदेह पहलवी शासन अपनी पूरी शक्ति के साथ क्रांति की इस लहर के सामने डट गया।
पहलवी शासन की दमनात्मक कार्रवाइयों से पता चलता है कि वो किसी भी स्थिति में जनता के साथ शांतिपूर्ण एवं शालीन व्यवहार के पक्ष में नहीं था। वो किसी भी स्थिति में जनता की छोटी सी छोटी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसी आधार पर रक्त पिपासु पहलवी शासन अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई से संकोच नहीं कर रहा था। निश्चित रूप से इस जन विरोधी शासन ने जन क्रांति का कड़ाई से दमन कर देने का फैसला कर लिया था। इस्लामी क्रांति और उसके पहले के काल में ही पहलवी शासन ने जनता के विरुद्ध कई तरह से अत्याचार आरंभ कर रखे थे।
उल्लेखनीय बात यह है कि निस्संदेह वर्ष 1978 में स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व में सफल होने वाली ईरानी जनक्रांति के दौरान अन्य क्रांतियों की तुलना में सबसे कम खून बहा। इमाम खुमैनी वरिष्ठ धर्मगुरु थे जो इस्लामी सिद्धांतों पर पूरी तरह कटिबद्ध थे। वे इस्लामी शिक्षाओं को लागू करने पर बल दिया करते थे। उनका कहना था कि हमारे धार्मिक आदेशों ने जो सबसे अच्छे और सर्वोच्च हैं हमारे मार्ग को निर्धारित कर दिया है। इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हिंसा से दूरी बनाना और शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं के समाधान के प्रयास करना है।
ये ईश्वरीय धर्म दयालुता और कृपा का प्रतीक है। यही कारण है कि इस्लाम धर्म की पहचान रखने वाले के रूप में स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह स्वयं को इस्लामी कानूनों के क्रियान्वयन पर कटिबद्ध समझते थे। क्रांति की सफलता के लिए उन्होंने अपनी रणनीति को ऐसा बनाया था जितना संभव हो सके कम से कम जनता को नुकसान पहुंचे। अलबत्ता ये कार्य बहुत ही कठिन था क्योंकि दुश्मन किसी भी प्रकार के अपराध में तनिक भी संकोच से काम नहीं लेता था।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।